नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जिनको बहुत देर तक फर्श पर बैठने का अभ्यास न हो, वे बीच में कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यहाँ 5 दिन से कथा का क्रम चल रहा है, आज 6th दिन है। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम मथुरा में विविध लीला किए हैं, उन लीलाओं में से कुछ का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। हम लोग वहां तक पहुंच गए जब भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ रंग भूमि में, रंगशाला में प्रवेश किए और भिन्न भिन्न चेतना वाले लोग भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से देखे। और इसके बाद कृष्ण बलराम के अद्भुत सौंदर्य, तेज और प्रभाव को देखकर वे सब आपस में जिज्ञासा करने लगे कौन है, तो परस्पर वर्णन करने लगे कि ये भगवान के अंश हैं और इस प्रकार इनका जन्म मथुरा में हुआ और इनके पिता गोकुल पहुंचाए। इस प्रकार अनेक लीलाएं वे आपस में कह सुन रहे थे और तब बाजे बजने लगे। इसके बाद जिस प्रयोजन से वह रंगशाला सजाई गई थी, वह प्रस्ताव चारुण बोला, इसको कम करना चाहिए, कम इतना हाव हाव की क्या जरूरत, सुनाई पड़ना चाहिए बस इतनी आवाज रख। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चारुण है जो कंस के द्वारा नियुक्त 5 पहलवानों में सबसे श्रेष्ठ था, बलवान था, उसने कहा, हे नंद सुनो हे राम भवंतौ वीर सम्मतौ नियूढ कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा होतौ दिदृक्षुणा। हे नंद सुनो, हे नंद के पुत्र, और हे राम भवंतौ, आप दोनों वीर सम्मतौ, वीरों के द्वारा सम्मानित हैं, आप दोनों की प्रशंसा बड़े बड़े वीर लोग करते हैं, और नियुद्ध कुशल, आप दोनों नियुद्ध में, मल्ल युद्ध में, दंगल में बहुत कुशल हो, ऐसी बात सब जगह प्रसिद्ध हो चुकी है। तुम लोग दोनों पहलवान हो और पहलवानी में तुम्हारा नाम सब जगह फैला है। इति श्रुत्वा, इसी को सुनकर, राज्ञा हुतौ, राजा के द्वारा तुम बुलाए गए हो दोनों। देखिए इसका कपट, पॉलिटिक्स खेल रहा है। बोलने में नंद सुनो कह रहा है, हे नंद पुत्र, और जानता है कि वसुदेव का पुत्र है, लेकिन भेद जानने के बाद भी यह सोचता है कि हम क्यों खोले। अगर ये कपट कर रहा है लड़का, अपने को नंद पुत्र कहता है, तो हम भी सभा में इसको नंद पुत्र ही कहें। लेकिन चारुण जानता था कि वसुदेव का पुत्र है, पर कृष्ण अपने को नंद के पुत्र रूप में ख्यात किए थे, इसीलिए चलो उनकी ही इच्छा रखते हुए बोल रहा था सभा में, लेकिन कपट कर रहा था। तुम दोनों की पहलवानी की प्रशंसा सुनकर राजा कंस ने तुम दोनों को बुलाया है, विदृत छोड़ा है। राजा तुम दोनों को देखना चाहते थे, क्योंकि भाई तुम लोग भी राजा कंस की प्रजा हो, तो प्रजा के पास यदि कोई विशेषता हो, कला हो, तो उस कला का प्रदर्शन राजा को करना चाहिए। यदि राजा प्रसन्न होता है तो प्रसन्न करने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार देता है। बताइए, इसलिए कब सुन लिया कि दोनों मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण हैं? छोटे छोटे बच्चे और कहता है कि तुम लोग पहलवानी में विश्व विख्यात हो गए हो, और इसीलिए राजा कंस ने तुम लोगों को बुलाया। राजा कंस कृष्ण बलराम का वध करने के लिए बुलाया था, वह युद्ध देखने के लिए नहीं, परंतु सब सिखाए गए थे, कंस के द्वारा पढ़ाए गए थे कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना, जिससे कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और जब तैयार हो जाए तो बीच में ऐसे मर्म स्थान में, छाती में, जहां तहां मार देना कि मर जाए। तो कंस सिखाया था उन लोगों को, लेकिन ये कह रहा है कि राजा तुम लोगों को देखने के बड़े अभिलाषी थे और इसीलिए मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं, अतः प्रियम राज्य प्रकुर्वन्त्य श्रेयो विन्यन्ति वही प्रजा। जो प्रजा राज्य प्रियम कुर्वन्ति, जो राजा का प्रिय करते हैं, जो प्रजा राजा का प्रिय करती है वह श्रेयो विन्यन्ति, उसका कल्याण होता है। मनसा कर्मणा वाचा, प्रजा को चाहिए कि अपने मन से, वचन से और शरीर से राजा का प्रिय करे। विपरीतम अतोन्यत, लेकिन यदि राजा के विरुद्ध कोई करता है तो फिर उल्टा फल मिलता है, फिर राजा उसे अरेस्ट करता है, मारता है, फांसी पर चढ़ा देता है। इसलिए प्रजा के लिए राजा ही भगवान है ऐसा समझकर तुम लोगों के पास जो भी मानसिक, वाचिक या शारीरिक विशेषता है अपने राजा कंस की प्रसन्नता के लिए उसको दिखाओ। फिर विशेषता कहता, नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम। मानो कृष्ण ने यह कहा कि हम कब पहलवानी किए हैं, हमको कैसे बहुत बड़ा पहलवान कह रहे हो, तो कहता है नित्यम प्रमुदिता गोपा। गाय चराने वाले नित्य प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता होती नहीं है, ये पहलवान कह रहे हैं। नित्यम प्रमुदिता प्रकर्षण मुदिता गोपा, मैं जानता हूं गोपगण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वत्सपाला जथा स्फुट, जैसे बछड़ा चराने वाले, यह स्फुटम कोई छिपी हुई बात नहीं है, प्रकट है। बनेशु मल्ल युद्ध न कृणंतश्चारयन्ति, गाय चराने वाले लोग वन में मल्ल क्रीड़ा भी करते रहते हैं, गाय चराते रहते हैं। नित्य वास्तव में यह बात है, बच्चे कभी कभी कुश्ती करते हैं और फिर गाय चराते हैं। तो तुम लोग भी बहुत अभ्यास किए हो दंगल का, मल्ल युद्ध का, गाय चराए हो, और माखन दूध घी सब खाने को मिलता ही है, इसलिए शरीर में बहुत शक्ति है तुम लोगों के। वास्तव में चारुण कृष्ण बलराम को बहुत बड़े पहलवान के रूप में देख रहा था, उसको छोटे रूप में भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। मल्ला नाम अशनी, मल्लों को अशनी वज्र पर्वत के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। तस्माद् राज्ञ प्रियं जुयं वयं च करवामहे, इसलिए हम और तुम राजा का प्रियं करवामहे करेंगे। हम भी कुछ जानते हैं पहलवानी और तुम भी जानते हो, तो हम जरा कला दिखावे राजा कंस को, अरे बाप कला दिखाने सर, मारने की नियत थी, अभिप्राय मारने का था, कहता है कला दिखावे राजा का प्रिय करे। भूतान न प्रसिद्धंति सर्वभूतमयो नृपः, यदि हम राजा का प्रिय करते हैं तो सभी जीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राजा जो है सर्व जीवमय है। राजा प्रसन्न हो गया तो समझो सारे जीव प्रसन्न है, और राजा यदि क्रोध हो गया, रंज हो गया, तो समझो कि सारे जीव रंज हो गए। नीति तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन अभिप्राय इसका बड़ा बुरा है। तो चलो तैयार हो जाओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अभी हाथी दांत लिए थे, बैठे थे आसन पर, छोटा सा बच्चा 11 बरस का, और वे बोले, बलराम जी चुपचाप थे, दोनों भाई साथ में थे। कृष्ण कहते हैं, तम सम्या ब्रवीत कृष्णो देश कालोचितम वचन। इस बात को सुनकर भगवान बोले, देश और काल के अनुकूल वचन। वो देश कैसा था, वहां सब लोग जुटे हुए थे, मथुरा का स्टेडियम था और मल्ल युद्ध होने वाला था, वो देश है। काल, काल तो था ही, सब वहां जुटे थे और लगभग 9-10 बजे का इस समय था सवेरे का, ये काल और अवसर। तो उसके उचित वचन भगवान बोले, नियुद्धम आत्मनो भीष्टम मन्य मानो अभिनंदित। यद्यपि भगवान के लिए नियुद्ध मल्ल युद्ध अभीष्ट था, वे चाहते थे, चारुण आदि पहलवान चाहते थे कि मल्ल युद्ध करके कृष्ण बलराम का वध कर देंगे, और भगवान चाहते थे कि हम लोग मल्ल युद्ध करके इनका आज वध करें, और उनका ही वध होगा। तो इसलिए आत्मनो अभीष्टम, भगवान का वह अभीष्ट था। चारुण जो कुछ बोला उसका मन में भगवान ने अभिनंदन किया, लेकिन बाहर से प्रतिकार सा करते हुए भगवान ने कहा, प्रजा भोजपते रस्य भयम चापि बने चरहा करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परमनुग्रहः। अस्य भोजपते वयम प्रजा, हम लोग इस सरकार राजा कंस की प्रजा है। भगवान कंस की तरफ दिखाकर कह रहे हैं, अस्य इस महाशय के हम लोग प्रजा है। भगवान बड़ी सुशील भाषा में बोल रहे हैं कि हम लोग भोजपति के प्रजा हैं और बनेचर हैं, बने चरंती थी बने चरा, हम लोग वन में रहते हैं, हम लोग का कोई घर द्वार नहीं है, वन में रहते हैं, गाय चराते हैं। तो देश में चाहे वन हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सब राजा के अधीन होता है, हम लोग इनकी प्रजा हैं। करवा म प्रियम नित्यम तन्नः परम अनुग्रह, हम लोग तो नित्य ही इनका प्रिय करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी सरकार कुछ कहे हमको, कोई कला दिखाने के लिए या हमको अपने दरबार में बुलावे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है इनका। ये तो बहुत कृपा है कि हमको ब्रज से बुलाए अपने दरबार में, और हम दिखाएंगे कला हमारे पास जो कुछ भी है। कला दिखाएंगे कि आज सबको साफ कर देंगे कला। भगवान कहते हम दिखाएंगे कला, कोई बात नहीं, यही तो परम अनुग्रह है। तो राजा का बड़ा अनुग्रह है किसी प्रजा को बुलावे कि भाई तुम कुछ हमको दिखाओ, हमको प्रसन्न करो, खुश करो, ठीक। परंतु बाला वयम तुल्य बले क्रीडिष्यामो यथोचितम, बाला वयम हम बालक हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम अपनी उम्र के और अपने बल के बच्चों के साथ हम कुश्ती दिखाएंगे राजा को। ये देखिए कितना सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, हम राजा को दिखाएंगे दंगल, लेकिन हम जिस उम्र के हैं, जिस आयु के हैं, जितना हमने बल है, उसी उम्र के और उसी बल के बच्चों के साथ हम राजा का प्रिय करेंगे। तुम भी बल ही क्रीडिष्यामः, समान बल वालों के साथ हम खेल करेंगे। हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ ही यहां बैठे हैं गोपगण, इनके साथ मैं दंगल करूंगा, या श्री बलराम हमारे बड़े भाई भी इन्हीं के साथ करेंगे, अथवा हम दोनों भाई कुश्ती करके दंगल करके राजा को दिखाएंगे। यथोचित भवे निजुद्धम मां धर्म स्पृश मल्ल सभा सब, जिससे कि इस सभा में बैठने वालों को अधर्म का स्पर्श न हो। आप लोग बहुत बड़े बड़े हैं, भारी पर्वत के समान हैं, बहुत काल से अभ्यास है, हमको तो आप छूते ही मार देंगे। ये हम आपके सामने क्या है, वास्तव में दंगल किसी मेघक के साथ गजराज का थोड़े हो सकता है, या किसी सियार या कुत्ते का दंगल सिंह के साथ नहीं हो सकता है। हम लोग तो छोटे छोटे हैं, और यदि ऐसा होता है कि हम लोग इनके साथ युद्ध करेंगे, मतलब मल्ल क्रीड़ा करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा
वे जो पहलवान थे बहुत बड़े बड़े और कठोर शरीर वाले थे, लेकिन फिर भी उनके पैर से पैर मिलाकर, जानू से जानू, सिर से सिर, छाती से छाती, और एक दूसरे को खींचने लगे, पटकने की चेष्टा करने लगे, जैसे पहलवान करते हैं। कभी कभी छाती सट जाती थी, कभी हाथ, कभी सिर भी आपस में टकराता था, परंतु चारूण और मुष्टि को भगवान का स्पर्श, श्री बलराम जी का स्पर्श वज्र जैसा लगता था। पर ये युद्ध देखने वाले लोग हाहाकार करने लगे, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभाव पात नहीं, लगे युद्ध करने। परिभ्रमण, परिभ्रमण का अर्थ है घुमाना, बाह पकड़ करके और घुमाना, और विक्षेप, विक्षेप का अर्थ है दूर हटाना, दूर झटकना, और परिरंभ कभी आलिंगन में पकड़ करके पटकने की कोशिश करना, और अवपातन कभी पटक देना, उत्सर्पण कभी ऊपर उछलना, अपसर्पण कभी आगे बढ़ना कभी पीछे होना, प्रत्यरुद्धता कभी दूसरे के प्रहार को रोकना, उत्थापन जब कोई गिर जाता था नीचे छाती के बल पर, तो दूसरा उसे उत्थापन करता था, उठाता था जोर लगाकर। दोनों हो रहे थे परस्पर, कुछ देर दंगल का आनंद भगवान ने लिया, शुरू में ही उनका वध नहीं किया, खूब मजे में चल रहा था युद्ध। उत्थापन उन्नयन, उठाना चाहता था, खींचना चाहता था परस्पर शरीर दोनों, सहल नहीं, और चालित कर्म उसको छाती के तरफ करने का, मतलब उसे चीत करना हम लोग कहते हैं। भगवान वैसे गिर जाता है काढ़ा में, छाती के बल उसको उठा करके उत्तान किया जाता है, एक कर्म है। परस्परम जिगीषं तौ चक्रतुरात्मना, इस तरह से परस्पर एक दूसरे को जीतने के लिए जो भी मल्ल युद्ध हो सकते हैं, जितनी कलाएं हो सकती हैं, सब कलाओं के साथ चारुण और मुष्टिक, चारुण और कृष्ण लड़ने लगे तथा मुष्टिक और बलराम जी, ये दोनों भाइयों का युद्ध है, दोनों से एक साथ ही हो रहा था, एक साथ चालू हो रहा था। श्री बलराम जी मुष्टिक के साथ यही सब कर रहे थे युद्ध, और श्री कृष्ण चारुण के साथ। बड़े भाग्यशाली थे वे लोग जो देख रहे थे इस युद्ध, और युद्ध होते होते, पहलवानी होते होते, श्री कृष्ण के मुख पर पसीना आने लगा, और श्री बलराम जी की मेहनत पड़ने लगी मनुष्य लीला के अनुसार, लेकिन पहलवानों को भी बहुत मेहनत पड़ने लगी। कभी कभी एक दूसरे के शरीर पर मारते थे मुष्टिका, कभी तमाचा भी मारते थे। और इसलिए ये जो युद्ध करने वाले पहलवान थे, कृष्ण बलराम को मारना चाहते थे, शुरू में चाहते थे कि ऐसा मारे मर्म स्थान पर की मर था, लेकिन जब वे मारना प्रारंभ किए तब सभा के लोग देखे कि ये तो क्रीड़ा नहीं हो रही है, तो वास्तव में युद्ध होने लगे। कुछ लोग कहने लगे इसको रोकना चाहिए रोकना चाहिए रोकना चाहिए, अधर्म हो रहा है अधर्म हो रहा है। भगवान के प्रति और श्री बलराम जी के प्रति ममता उमड़ गई सबकी, यह अधर्म हो रहा है, ये क्रीड़ा नहीं हो रही है, ऐसे थोड़े मन जो किया जाता है। कुछ लोग तो बड़े विकल हो गए भगवान की इस विवस्था को देख कर, परंतु उसमें से सबको मालूम नहीं था कि ये भगवान है और अभी अभी इसका वध कर देंगे। भगवान इस प्रकार की लीला करके मनुष्यों के हृदय में अपने प्रति एक स्नेह पैदा करते थे। भगवान की यह एक लीला भंगी है, वास्तव में वे संवेदना पैदा करना चाहते थे और श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव संवेदना, उनके प्रति दया स्नेह, यही है अध्यात्म की ऊंचाई। भगवान के प्रति जितनी ही ममता जिसके हृदय में है वो उतना ही ऊंचा साधक है, वो उतनी ही भक्ति है वास्तव में। तो पूरे उस सभा में बैठे हुए लोग कृष्ण के प्रति दया से भर गए, वात्सल्य से, इस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, उन दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहने लगे। और किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तद बला बलवर्जुम समेत सर्वयोषित ऊचु परस्पर राधन सान लंबावरोध। सबसे पहले स्त्रियों ने कहना चालू किया, क्योंकि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल और अबल का यह युद्ध देखकर, बलवान और निर्बल का यह युद्ध देखकर, सर्वयोषित सारी स्त्रियां जो बैठी थी उस सभा में, ऊंचे परस्पर अंगाजन हे महाराज परीक्षित, वे आपस में कहने लगी साधु कंपा गरुड़, कृष्ण और बलराम के प्रति अनुकंपा भर गया हृदय में, स्नेह उमड़ गया और वे स्त्रियां आपस में कहने लगी महानयम बता धर्म ईशान राज सभासदाम ये बला बल वर्जुद्धम राज्यो अमिच्छन्ति पश्यतः। ओहो, राजा की सभा में महान अधर्म हो रहा है, जबकि अधर्म करने वाले लोग राजा के दरबार में दंडित होते हैं, लेकिन राजा की सभा में ही अन्याय हो रहा है, ये बहुत सुख की बात है, बहुत दुख की बात है, इस राजसभा में अन्याय हो रहा है, दुख की बात है। तो आपस में सारी स्त्रियां इस तरह से कहने लगी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, कहां ये बलवान पहलवान और कहां कमजोर बच्चे। उसी को स्त्रियां कहती हैं को वज्र सार सर्वांग मल्लव शैलेन्द्र सन्निभव, कहां वज्र के समान कठोर अंग वाले ये पहलवान, पर्वत के समान ये पहलवान, और कहां क्वचात सुकुमार आंगो किशोर नाथ जौवन, और कहां ये बच्चे जिनका अंग अति सुकुमार है, जिनका हाथ पैर सब कुछ अति सुकुमार है, किशोर ये किशोर है नाथ जौवन अभी युवक नहीं हुए, युवक होते तो चलो युद्ध कराते, लेकिन अतिश्य कुमार शरीर वाले हैं, बच्चे हैं, और इनके साथ इन पहलवानों का युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। किशोरव नाप्त जौवनो, ये किशोर है, न आप्त जौवनो, जौवन को प्राप्त नहीं है, आपते अप्राप्त दोनों का एक ही अर्थ है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुए हैं, और देखो सके कितना बड़ा धर्म होने लगा। धर्म व्यतिक्रम यस्य समाजस्य ध्रुवम् भवेत्, निश्चित ही समाज में बैठे हुए सबको महापाप लगेगा। इस सभा में यदि इसका विरोध नहीं किया जा रहा है तो सबको ये पाप लगेगा। ये नीति शास्त्र कहता है कि जिस समाज में कोई गलत काम हो रहा हो और उस समाज में कोई व्यक्ति उसको मना नहीं करता है, केवल देखता है, तो उसको भी उतना ही पाप लगता है। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण जब दुशासन कर रहा था, यद्यपि सब ने वस्त्र हरण नहीं किया, लेकिन उस सभा में जो लोग चुप रह गए, विरोध नहीं किए, उन सबकी आयु उसी समय क्षत कर दी गई, 50 वर्ष क्षतायुष। भागवत में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि जो लोग उस सभा में बैठे थे, जिन्होंने विरोध नहीं किया, उन सबको कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं मरवा दूंगा, केवल द्रौपदी के केशों का आकर्षण करने के कारण। जबकि एक व्यक्ति केस खींचा था, लेकिन सब लोग देख रहे थे, क्या जरूरत है देखने की, चले जाते या विरोध करते। ये नियम है कि किसी सभा में अन्याय हो रहा हो तो शक्ति हो तो विरोध करना चाहिए, और नहीं तो सभा से बाहर चले जाना चाहिए, नियम। लेकिन वास्तव में वहां बैठे हुए लोग महाभारत में जहां द्रौपदी का केशाकर्षण किया जा रहा था, तो सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे। देखता था कि कौन कौन लोग हाजिर है। हाजिर नहीं होने का मतलब था कि वे लोग हमारे एक्शन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा होता है कि सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे, इसलिए वो पाप लगते हैं। राजा की चापलूसी इस तरह से लोग करते थे, फ्लैटरिंग करते थे। धन के लिए या पद के लिए, जैसे भी राजा को खुश करना चाहते हैं, परंतु अधर्म का कभी अनुमोदन नहीं करना चाहिए, चुपचाप उठ कर चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यहां जितने लोग सभा में बैठे हैं, सबको महापाप लगेगा, और उस महापाप के कारण उनकी दुर्गति होगी परलोक में। सभा कहीं भी सभा होती है, चाहे छोटी सभा हो चाहे बड़ी सभा हो, सभा में अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय, चोरी या लंपटता कोई मनुष्य अकेले में करता है तो राजा उसको दंड देता है। जो राजा के समाज में ही अन्याय हो रहा है तो प्रजा किसके शरण में जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे न्याय की याचना करेगी। राजा का किस प्रकार लोग अभिनंदन करते हैं या उसकी खुशामदी करते हैं, इस विषय में एक हमारे यहां कहावत है, काजी की कुतिया मरी थी तो पूरा गांव दफना नहीं गया, लेकिन काजी मर गया तो एक भी आदमी नहीं गया। एक काजी था, काजी मुसलमानों में छोटे शासक को कहते, काजी की खुशामद करते थे लोग, एक गांव में रहता था। काजी की एक बार कुतिया मर गई और कुतिया को दफनाने के लिए काजी जा रहा था, तो गांव के सब लोग गए काजी देखने के लिए, जुलूस में आया है कुतिया को दफनाने में, सब लोग आए। लेकिन जब काजी मर गए तो एक भी अभी नहीं गए, क्योंकि अब तो काजी देख नहीं रहा था तो मर गया। तो उसके कुतिया तो दफनाने गांव के सब लोग गए, लेकिन राजा मर गया, काजी मर गया, कोई तो कोई बात नहीं, तो देख नहीं रहा। तो इस तरह से लोग राजा की खुशामद किया करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम निश्चित अधर्म है, पाप है। जत्र अधर्म समुत्तिष्ठे न स्थेयम तत्र कर्षित। जिस समाज में अधर्म होना चालू हो जाए, उस समाज में परिचित न स्थेयम, कभी नहीं ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, सब देना चाहिए। न सभाम प्रविशे प्राज्ञ सद दोषा न स्मरण। उचित तो यह है कि सभा के दोष को जानकर सभ्य व्यक्ति को सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित भ्रम से प्रवेश कर गया है तो तुरंत निकल आना चाहिए। अभ्रुवन विभ्रुवन अर्जुन नरह के विषम अस्मते, सभा में ही प्रवेश न करें, अच्छा यही है, क्योंकि उस अन्याय के विरुद्ध बोलेगा तब भी ठीक नहीं है, और अनुमोदन करेगा तब भी ठीक नहीं है। यदि बलवान व्यक्ति अन्याय करा रहा है और इसका कोई विरोध किया तो विरोध भी ठीक नहीं है, तो विरोध करेगा तब भी ठीक नहीं होगा और चुपचाप रहेगा तो तभी ठीक नहीं है। विरोध करेगा तो राजा दंड देगा और नहीं विरोध करेगा तो जमराज से दंड देंगे। इसलिए सभा में जाना ही नहीं चाहिए। स्त्रियां
वल्गत शत्रु अभिता कृष्ण से बदनांगुजन दीक्षता सर्वाभितम पद्म को सन्नांगुभि।
स्त्रियां कहती हैं अरे देखो चारों के साथ पैदरा बदलते हुए और लड़ते हुए कृष्ण के बदनांगुज को देखो कमल के समान सुकुमार मुख है। तो बदनांगुज का अंबुज का अर्थ कमल, अंबु से जन्म होता है जल से जन्म, कमल के समान अति सुकुमार मुख है कृष्ण का। श्रम वारी उत्तम देखो देखो कृष्ण के सांवले बदन पर बदनांगुज पर परिश्रम के जल व्याप्त हो गए। परिश्रम होने से जब शरीर से जल निकलता है तो उसको पसीना कहते हैं या श्रम जल परिश्रम जल। तो कृष्ण के मुख कमल पर परिश्रम की बूंदे उभर आई हैं। पद्म कोशों मामू जैसे पद्म कोष पर कमल के कर्णिका पर कोष पर जैसे जल की बूंदे हर जाए और सुंदर लगती हैं वैसे श्री कृष्ण का मुख लग रहा है। दूसरी स्त्री कहती है किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्र लोचनम मुष्टिकम प्रतिशाम संहास कर्णम शोभितम। अरे बलराम के मुख को क्यों नहीं देख रही हो, उनका मुख क्रोध से लाल हो गया है पांडे की तरफ, ये तो ऐसे ही गोरे और लाल है और अब मुष्टि के प्रति भगवान राम का क्रोध बढ़ रहा है। देखो क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। अब इस प्रकार से अधर्म युद्ध को देख करके स्त्रियां कहती हैं ओ हो हरि सखी इस संसार में सबसे भाग्य वाली कोई नारियां हैं जो ब्रज की नारियां, क्योंकि वे लोग उस समय श्री कृष्ण को देखती थी जब श्री कृष्ण आनंद में बांसुरी बजाते थे प्रसन्न रहा करते। हम लोगों को तो विधाता ने ऐसे समय में दर्शन दिया है जब यह लड़का जब यह पुरुष विपत्ति में पड़ा हुआ प्रसन्न है। धन्य है ब्रज की स्त्रियां जो श्री कृष्ण के हंसते हुए गाते हुए मुख को देखती हैं नाचते हुए परम प्रसन्न रहते हैं ब्रज में। ब्रज वृंदावन का अपना आवास स्थान है और आज ये परदेश में आ गए हैं इनकी ये दशा है। मतलब वही लड़का वही कृष्ण जो ब्रज में स्वच्छंद विचरण करते हैं खेलते हैं खाते हैं नाचते हैं गाते हैं और उस समय जो उनको देखती हैं वे स्त्रियां धन्य हैं। हम लोगों को तो अनवसर पर विधाता ने दर्शन दिया ठीक अवसर नहीं है। जब यह व्यक्ति संकट में है उस समय हमें दर्शन हुआ क्या कहें। इस पर ब्रज की स्त्रियों की महिमा गा रही है
पुण्यावत ब्रज भू जदयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वंचित्र माल्य गाह पालयन सह बल कुणयम सदेणु विक्रीड़यन चिव गिरी प्रदमाचुता।
जानकी वो सखी कौन ये है वह श्री कृष्ण जो ब्रज में विहार करते हैं और इनके चरणों की अर्चना शिव ब्रह्मा और लक्ष्मी करते हैं। गिरी गिरित्र रमा चक्का गिरित्र कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव इनके चरणों की आराधना करते हैं। ब्रज में ऐसी घटना होती रहती थी प्रतिदिन भगवान शिव आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। अर्चित अंगुली पूजित चरण कमल इनका है। ये ब्रज में रहते समय वनचित्र माल्य वन में खिलने वाले पुष्पों की विचित्र मालाएं पहनते थे, गाह पालयन गौरे चराते हुए सह बल बलराम जी के साथ कोणयंश से वेणु वेणु कोणन करते थे, वेणु बजाते रहते थे, कितने आनंद में कितना सुख में रहते थे। और इस तरह भी क्रीड़ा क्रीड़ा करते हुए भ्रमण करते थे वन में, स्वच्छंद में, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं मन में, यह भाव आनंद से। ऐसे पुराण पुरुष को जो मनुष्य देश में विहार कर रहे हैं, ब्रज में विहार करते हैं, उस समय ब्रज की स्त्रियां उनको देखती हैं तो धन्य है। और वास्तव में ब्रजभूमि धन्य है, पुण्यवत ब्रजभू ब्रजभूमि धन्य है, जिस भूमि में श्री कृष्ण आनंद से विहार करते हैं। देखो तो यहां तो इनको बाध्य किया जा रहा है लड़ने के लिए, और वह भी बहुत बड़े बलवान के साथ। तो एक तरफ है श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, और दूसरे तरफ वात्सल्य उमड़ रहा तो कहती है ठीक नहीं। और यदि कृष्ण पुराण पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा है, तो ये पहलवान क्या करेंगे उनका। लेकिन ये है मथुरा का भाव, मथुरा में ऐश्वर्य भाव भी रहता है, वात्सल्य भाव भी रहता है, माधुर्य भी रहता है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये पुराण पुरुष ब्रज में विचरण करते हैं, सुख से बांसुरी बजाते हैं, खेलते हैं, और आज बहुत बड़े दुख में पड़ गए। तो हम लोगों को जो दर्शन मिला है वो अनवसर पर दर्शन मिला है। मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, ये नंदगांव से, लेकिन वन में ब्रज में भगवान स्वच्छंद विचार करते हैं, यानी सीटी में आकर के फिरमालती में फंस गए हैं। अपना वास्तव में जो घर होता है, खास करके गांव में और वन में, तो वहां पर बच्चों का या लोगों का जो स्वच्छंद विचरण होता है वो अपने ही ढंग का। शहरों में तो लोग रहते हैं, देखने में लगता है कि खुश हैं, लेकिन खुश नहीं रहते, न वो शुद्ध हवा मिलती है और न तो चिंता से मुक्त रहते। इधर तो मैं पूछता हूं आप खुश हैं, तो प्रत्येक आदमी बताता है नहीं, ये घर का मॉर्गेज देना है, तो बिल देना है, तो ये देना है। स्वामी जी एक कार पर चलता हुआ देख करके आप मत समझिए कि लोग सुखी हैं, हम लोग सुखी ऐसा कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में तो गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी ज्ञानानंद से रहता है। एक बार हम लोग कुछ भक्त वृंदावन में बैठे थे शाम के समय, और कुछ बातें हो रही थी, कुछ हास्य रस या कुछ ऐसा, कि सब खिला करके हंस रहे थे, लड़के थे और सब खूब हंस रहे थे। एक इधर से भक्त गए थे अमेरिका से, वो कहते हैं, उनसे कहे कि महाराज ऐसी हंसी अमेरिका में लोग नहीं हंसते। वो देख करके दौड़ हो गया कि इन लड़कों को कोई दुख है ही नहीं, इतना हंस, स्वप्न में भी कोई दुख नहीं। इधर की हंसी शहर में क्या है, जैसे स्टूडियो में फोटो के लिए जाइए तो स्टूडियो वाला कहते जरा मुस्कुरा जाए, तो जोर लगा करके कभी मुस्कुराते, वो मुस्कुराहट है, स्वाभाविक मुस्कुराहट हृदय से आती है। श्री कृष्ण वन में जिस तरह से खुश रहते हैं, खेलते हैं, किसी गोपी पर देखते हैं या गोप सखा के कंधे पर अपनी बांह रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, छिड़कते हैं, उस समय जो उनका दर्शन किया, वे ब्रजवासी धन्य है और वह ब्रज भूमि धन्य है। मथुरा की भूमि किसी काम की नहीं है, जहां इस पुरुष को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां आते ही धोबी गाली दिया तो धनुष तो की रक्षा करने वाले मारने दौड़े थे, तो गेट पर हाथी खड़ा किया गया था, कि भगवान की कृपा से सब जगह यह लड़का विजयी हो रहा है, परंतु फिर भी बहुत संकट है इसके सामने। तो धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है गोपियां।
गोप्यः तपः किं चरं जगमुष्य रूपं लावण्यसारं समोद्भवनं निषिद्धम् दृग्धिः पिबं तनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधाम जसः श्रिय ऐश्वरस्य।
गोप्यः तपः किं चरं हरिसखियो, गोपियों ने कौन सा सुकृत किया था, उनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ, तो ऐसे शहर में जन्म ली है जो हम श्री कृष्ण को देख नहीं पाते। देखने का भी अवसर मिला तो आज इस कठिन अवसर पर मिला, जब यह पुरुष खुश नहीं है, दुख में, संकट में।
गोपियों ने कौन तप किया था जो श्री कृष्ण के असमूर्थ लावण्य सार श्री विग्रह को देखती रहती।
श्री कृष्ण का शरीर और उनका शरीर सौंदर्य असम ऊर्ध है, असम ऊर्ध का अर्थ होता है ऊंचा, सम का अर्थ समान। श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है, फिर उनसे ऊर्ध होने की तो बात नहीं है।
असम ऊर्ध लावण्य सार,
लावण्य का सौंदर्य का सार है श्री कृष्ण का विग्रह ब्रज में।
और अनन्य सिद्धम, न अन्य सिद्धम,
अनन्य सिद्धम का भी भगवान इतना सुंदर है तो उनकी सुंदरता अन्य सिद्ध नहीं है, स्व सिद्ध है, अपने आप सुंदर है। दूसरे लोग कपड़ा पहन करके गहना लगा करके सुंदर लगते हैं थोड़ा सा, लेकिन भगवान अनन्य सिद्ध अपने आप ही है, और उनकी सुंदरता अन्य वस्तु के कारण नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर पर आभूषण जब डाले जाते हैं तो उससे आभूषण सुंदर लगते हैं, कृष्ण नहीं, भूषण भूषण आएंगे। मनुष्य समाज में या देवताओं के समाज में जो सुंदरता है वह बाद में मिलती है और दूसरे के द्वारा, जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है मनुष्य में तो वो तो बिल्कुल कीड़ा जैसा रहता है, कोई सौंदर्य नहीं रहता है और ज्ञान नहीं रहता है, कोई बल नहीं, कुछ न बैठने की शक्ति रहती है, न बोलने की, न खाने की। जब जरा उसे पूछिए कि कौन दिन है आज तुम जन्म लिए, आगे चल करके तो भारी प्रोफेसर हो जाते हैं, ये मंत्री वो मंत्री बहुत आते हैं, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन कैसे थे। तो दूसरा व्यक्ति उठाता है बच्चे को, जन्म देने वाली माँ भी बेहोश हो जाती है, दूसरी स्त्री उठाती है, सहलाती है, पोषती है उसके मन में, तो वो बच्चा एक दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बाद में तक कहता है ना ऐसा हो ना ये हो ना ये। और यह जो सुंदरता है जीव की अपनी सुंदरता नहीं है, प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति फिर छीनेगी, तुरंत शरीर को बूढ़ा बनाएगी और काले काले केस सफेद हो जाएंगे, झुरियां पड़ जाएगी, और वो अभी नहीं रहने देगी प्रकृति, अंत में कब्र में या चिता में जाए। यह है सौंदर्य, यह पर सिद्ध है, तो दूसरे के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और ये विकृत होता रहता है। काले में जातो विकृतो विनश्यति, काल द्वारा यह शरीर पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है और अंत में विकृत होकर के समाप्त। हम लोगों से पहले भी संसार में बहुत मनुष्य हो गए हैं, लेकिन वो सेट चला गया, नया सेट आया है मनुष्यों का, ये भी बीत जाएगा, इसके बाद दूसरा सेट आएगा, ये चलता रहता है। और इसी में लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, लेकिन सुंदरता सब समय नहीं रहती है। एक तो अधिक सुंदरता नहीं है और रहती भी है तो विकृत होती रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अनन्य से मथुरा की स्त्रियां कह रही थी, दृग्धि पिबंति अनुसवाभिनवं दुरापम, अनुसवम निरंतर
तीन टाइम कम से कम श्री गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य सुधा को नेत्रों से पीती रहती है, पिबंती अनुसरण आंखों से पीती रहती, मतलब वहां गोपियों पर कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे ब्रज में गांव में गोपियों पर बहुत बड़ा बंधन है, वो नहीं देख सकते कृष्ण का, क्योंकि उनके घर के लोग डांटते हैं, लेकिन वन में इधर उधर से कृष्ण को निर्बाध रूप से देखती है। श्री कृष्ण का वह रूप, वह सुंदर दुरापम दुर्लभ एकांत धाम जस श्री ऐश्वर्य, श्री का ऐश्वर्य का और जस का वो आश्रय है, निवास स्थान है भगवान का शरीर। मुझे समय नहीं है कि मैं यहाँ पर व्याख्या करूं, मैं आगे बढ़ना हूं, लेकिन वास्तव में भक्तों के समुदाय में जो चार श्लोक मथुरा की स्त्रियां बोली है गाती हुई, इसकी व्याख्या तो चार दिन में होती है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, लीलाओं का और सबका, लेकिन चूंकि हमको कुछ पूरा करना है, देवकी वसुदेव को तारा गृह से छुड़ाना है, कल आज कम से कम कौन सा वध हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मथुरा किसलिए आगे कहती है कि गोपियां धन्य है जो श्री कृष्ण की लीलाओं को रात दिन गाती रहती हैं। कैसे गाती हैं? यादो हने वहन ने मथनो कले पर प्रेम खेखनाभ विदितो क्षण मार्जना दो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुखंजो धन्या ब्रज स्त्रिय गुरु क्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रज की स्त्रियां, ऐसे ब्रजवासी भी सभी धन्य हैं, लेकिन वास्तव में ब्रजवासियों में मुकुट मणि से गोपियां हैं, धन्य हैं गोपियां। उरुक्रमचित तयाना, जिनके चित्त पर उरुक्रम चढ़े रहते हैं, विविध लीला विलासी भगवान हमेशा जिनके मन में थिरकते रहते हैं। बच्चे को पकड़ के बैठाओ, क्यों छोड़े हो, जिसका बच्चा है उनके पकड़ो। गुरु क्रम चित्त या श्री कृष्ण हमेशा गोपियों के चित्त में छाए रहते, अर्थात भगवान की सुमधुर लीलाएं श्री गोपी जनों के हृदय में हमेशा उभरी रहती। जो दोहने अवहन में गाय दुहते समय, दही मथते समय भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती, कौन लीलाओं को, जो ब्रज में होती रहती उन लीलाओं को गाती रहती, उन्हें कविता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कथा गान आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो व्यक्ति बोलता है कविता में बोलता है। हम लोगों ने देखा है हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग जो बात करते हैं तो काव्य में बात करते हैं, उनको आशु कवि कहते हैं। वृंदावन में एक बर्माली दास परम शास्त्री थे, संस्कृत बोलते थे और कविता में बोलते थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने थे देश में, तो उनका स्वागत भाषण करना था बर्माली शरण शास्त्री, जैसे खड़े हुए और पहले से कुछ नहीं रहते, धारावाहिक कविता में उनका अभिवादन करने लगे, संस्कृत कविता में। इस प्राकृत जगत में भी ऐसे लोग होते हैं, अप्राकृत जगत में प्रत्येक व्यक्ति कविता में बोलता है, तो गोपियां गाती ही रहती। दोहन है गाय दूहते समय, गाय दूह रही हैं और गा रही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई आवश्यक नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ करके और गेरुआ कपड़ा ले करके भभूति रमा करके भजन किया जाए। दोहन है गाय दुहते समय, अवहनन धान कूटते समय, कोई चावल कूटते समय ढेकी से, इधर के जो लोग ढेपी भी नहीं जाने में ढेपी क्या चीज दे दीजिए
धन में है वे लोग जो गांव में जन्म लिए हैं और देखे हैं ये सब चीज,
नहीं तो ये तो शहरों में देख सोच सुनने के बाद भी कोई सोच नहीं पाएगा। मिल में सब कुछ हो जाता है, मिल में कह दो तो मिल में कुत्ते हुए लोग नहीं देखते, सीधा स्टोर में चावल आ जाता है। एक बार मैं एक भारतीय व्यक्ति के घर में गया था अमेरिका में, एक बच्चा था लगभग 10 बरस का होगा, तो मैं उसको सिखा रहा था कि तुमको वेजिटेरियन आहार करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, और बता रहा था गाय हमारी माँ है, तो तुझे कैसे माँ है, तो गाय दूध देती है, दूध पी करके हम लोग बड़े होते हैं, तो वो कहता है कि दूध गाय से आता है। मैंने पूछा कि तुम क्या समझते हो, तो कहता हम तो स्टोर से लाते, मेरे डैडी स्टोर से लाते। स्टोर में आता है लेकिन गाय दूध देती है वहां से आता है, वो हैरान हो गया मेरी बात सुनकर। गाय से दूध आता है, काऊ से दूध आता है, वो देखा है केवल स्टोर से लाते हैं। जो व्यक्ति गाय को दूहना देखा ही नहीं है वो क्या एक कथा समझेगा बताइए, हमने देखा नहीं। तो गोपियां गाय दूहते समय भी भगवान का यश गाती रहती थी, लीला गाती रहती थी, ये सब देखना चाहिए। और कूदते समय ढेंकी कहते हैं, लकड़ी होता है लंबा और उसके अगले सिरे में एक पिस्टल जैसा लगा रहता है और बीच में दो खंभे होते हैं, इधर खास करके स्त्रियां कूदती इधर उठाती हैं तो अगला सिरा उठता है, छोड़ देते हैं गिरता है, तो उससे धान के छिलके निकल जाते हैं, चावल आ जाता है, तो और भी अनाज कूदते कूदती तो अवहनन का। और जाता चलाते समय चक्की चलाते समय हाथ से पहले पीसा जाता था, आटा पीसा, अभी हम लोगों के होश में सब चीजें बिल्कुल सुलभ और सब लोग मथनों पर दही मथते समय, उपलेप घर लिपते समय या शरीर को शरीर में कुछ चंदन आदि लगाते समय, प्रेम और झूला झुलाते समय, बच्चों को झूला झुलाते समय किसी की लीला गाते हैं, उनको चुप कराते हैं, सुलाते हैं, या स्वयं झूला झूल करके वे गाते रहते हैं, वो क्षण स्नान करते समय, घर में पानी छिड़कते समय, वर्ज ना दो घर गुहारते समय गायंती सवेदम अमृत भियो अश्रु कंठे, गोपियां कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती थी और अश्रु कंठ कंठ में आंसू भर जाता था, गला गदगद हो जाता था और मन भगवान में लगा रहता था। धन्या ब्रज स्त्री, धन्य है ब्रज की स्त्रियां, हरि सखी हम धन्य नहीं है, हम हतभाग्नि हैं कि हमारा जन्म मथुरा में हुआ, क्यों नहीं विधाता हमारा जन्म ब्रज में हुआ। इस तरह से जबकि भगवान को देख रही है पर अनवसर पर देख रही है। प्रातर ब्रजत सायं गोभी समं क्वणयतोस्य विषम्य रेणु निर्गम्य तूर्णमबला पतिभूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावलोकम्। प्रातः काल श्री कृष्ण सखाओं के साथ ब्रज से वन में जाते हैं और सायं के समय वन से फिर ब्रज में लौटते हैं। लौटते समय अपने परम सुंदर मुख में वेणु धारण किए रहते हैं और बहुत सुंदर स्वर में गाते हैं, इस समय अपने अपने घरों से निकलकर श्री गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। कितना उनका सुख होता है, निश्चित ही कोटि कोटि जन्मों में उन्होंने बहुत बड़ा सुकृत किया होगा कि श्री कृष्ण के गण से लौटते हुए देखती हैं गाते हुए प्रसन्न भूरी पुण्या प्रश्न की सस्मित मुखम सदयावलोकम, और श्री कृष्ण भी मुस्कुरा करके गोपियों को देखते हैं, अपने मन का अभिप्राय व्यक्त करते हैं और गोपियां देखती हैं धन्य हैं गोपियां इसके लगते जो श्री कृष्ण को इस तरह सुखी देखती। इस प्रकार जब स्त्रियां बहुत ही कोमल हृदय से भगवान के प्रति सस्नेह बातें कर रही थी तो भगवान इसको सुने, सुनकर उन्होंने सोचा कि बहुत देर तक इनको दुख में नहीं रखना चाहिए, बेचारी बहुत रो रही है, छटपटा रही है, दुखी थी। यद्य उच्च स्वर से नहीं रो सकती थी मथुरा की स्त्रियां, लेकिन बेचारी बहुत दुखी थी। तब भगवान चारुण को मारने का संकल्प कर दिया, बहुत देर तक दुख में नहीं रखना। एवं प्रभासमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रु हम तुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। हे महाराज परीक्षित, जब योगेश्वरेश्वर हरि इस प्रकार स्त्रियों की बात को सुने तब अपने शत्रु को मारने का मन में काम लिए, स्त्रियों का दुख दूर करना। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुर पितरौ अन्न तप्येताम पुत्रयो लब्धौ बलम्। और उन स्त्रियों के सभय बात को सुनकर वसुदेव जी और देवकी और नंद महाराज बहुत विकल हो गए। वसुदेव जी रोने लगे और माता देवकी के स्तनों से दूध चूने लगा, आंसू बहने लगे। वसुदेव जी प्रकट नहीं बैठाए गए थे, स्टेडियम के पीछे उनको बैठाया गया था, देख नहीं रहे थे। सुनकर स्त्रियों के बाद देवकी वसुदेव रोने लगे, अब देखिए किस तरह से पुनः युद्ध हुआ। तैस्तय निजुद्ध विधि विविधय रचुते तरो दुर्युधाते जतानम्यम तथा बल मुष्टिकम। मल्ल युद्ध के जो भी नियम है ये सब नियमों के साथ यहाँ तक कि कुछ अधर्म पूर्वक भी दोनों में युद्ध होने लगा, चारुण और कृष्ण में और बलराम जी में और मुष्टिक में। पहले जैसा प्रस्ताव था कि यहाँ क्रीड़ा करना है, क्रीड़ा पार कर गया, अब एक दूसरे को मारने के का खुलम खुला दाव पे चालू हो गया। भगवान मन में ठान लिया मारना, किस तरह से मार रहे हैं सुनिए। भगवत गात्र निष्पात वज्र निष्पेश निष्ठुर, भगवान के हाथ का उनके मुष्टिका का वार और तमाचा वज्र का सार जैसा लग रहा था चारों को, और ऐसा लगने से उसका सारा देह टूटने लगा। अरे अनंत बल है भगवान में, देखने में हाथ छोटा है लेकिन जब गिरता होगा उसके देह पर तो आप नानी बवा पा। इसके मन में होने लगा कि हाय रे बाप, मैं क्यों इस लड़के से भिड़ा है, कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं बरबस इसको लड़ाया बरबस इसको लड़ाया। वो इस तरह से ग्लानी बवा पा भगवत गात निष्पातर वज्र निष्पेश निष्फुर, वज्र निष्पेश, वज्र निष्पेश का वज्र को भी जो पीस सकता है, मारने को धूर कर सकता है, ऐसा भगवान का अंग था, कठोर हाथ पैर पैर और हाथ आदि, तो उसे भज्यमान चारुरो भज्यमान अंग बहुत ग्लानी हुआ, बहुत ग्लानी हुई उसे, और अब लगा कि हाय बाप अब नहीं बचूंगा। अच्छा उस समय भी अगर वो युद्ध छोड़ दिया होता तभी भगवान उसे नहीं मारते, लेकिन अब वो अपनी इज्जत बचा रहा था, अब कैसे भागे या ये कैसे कहे कि हम अब हार गए या थक गए, हम नहीं लड़ेंगे माफ करो, अब अपनी मिथ्या इज्जत को बचाने के लिए फिर भी लड़ रहा है। सेन वेग उत्पत्य मुष्टिकृत कला उभव, एकाएक जैसे बाज पक्षी उड़ता है और प्रहार करना चाहता है, वैसे दृष्टि बचाकर कृष्ण के और कृष्ण के छाती में दोनों हाथ जोड़ कर ऐसे और मारना चाहे जोर से, जब ही मारना चाहते ही भगवान उसके हाथ को पकड़ लिए, दोनों बंधे हुए हाथ को, और उसको ले करके दोनों हाथ से भगवान ऐसे ऊपर घुमाने लगे, इतना जोर से घुमाए कि भ्रामरस्तिक्त जीवित ऊपर ही उसके प्राण खत्म हो गए। बहुत तेज घुमा दिया भगवान ने, ऊपर भर गया और मरे हुए शरीर को इसके बाद पटके वहीं पर था। उधर बलराम जी, जब बलराम जी ने देखा कृष्ण इस तरह से मारे हैं, तो बलराम जी अपने हाथ का ऐसा तमाचा मारे कि वो खून फेंकता हुआ मुष्टि को ही बन गया, गिर गया। अब तो सभा के लोग जय हो लगे बोलने, यहां तक कंस के जो आदमी थे वो भी लगे जय जय बोलने। अब क्या करे कंस, इस तरह से युद्ध हो जाए। भगवंतम वासुदेव क्रुद्धो पक्ष सताय ना चलत प्रहार, एक बार वो मार दिया भगवान को, लेकिन भगवान को वह प्रहार ऐसा लगा जैसे लगा कि माला से हाथी को मारा गया, फूल की माला से जैसे कोई हाथी को मार ले, वैसे चारुण की मुष्टिका भगवान के छाती पर लगी, तो बिल्कुल कोमल लगा। सुखदेव को संवरण कर माला हता युवत विप, माला से जैसे हाथी को मारा जाए वैसे अपने दोनों मुष्टिका का वार बहुत जोर लगाकर कर किया, लेकिन बाहो निगृह चारुण बहुस भ्रामयन हरि, बाह पकड़ करके बहुस भ्रामयन, बहुत तेज गति से घुमाए और कई बार घुमाए और उसी में वो मर गया। भूपृष्ठे पोथे आमास, भूमि पृष्ठ पर अखाड़ा में नहीं, बगल में जो पत्थर था उस पर पटका भगवान ने जोर से, बहुत जोर से ऐसे फेंका, निकट ही नहीं और जगह पर। तरसा छीण जीवितम, वह छीण जीवितम मतलब जीवन समाप्त हो गए। विश्वस्त आकल्प के इंद्र भरिया, इसके बाल बिखर गए थे, आभूषण टूट गए थे, जैसे इंद्र ध्वज गिरे एकाएक, बहुत बड़ी पताका गिरे वैसे गिरा। तथा वो मुष्टिका जब देखा कि चारुण दोनों मुष्टिका से मारा बलराम जी को यानी कृष्ण को, तो मुष्टिक भी ऐसा ही किया। तथा वो मुष्टिका पूर्वम वे पिता स रुधिर उद्गमन मुख तो पिता जैसे पता तो दिवस थे वार्ता हटे, जैसे बहुत बड़े आंधी के देश से कोई वृक्ष उखड़ गया और गिरे कहे, उस तरह से हाय हाय करता हुआ गिरा मुश्किल तमाचा लग गया। श्री बलराम जी का तमाचा बहुत प्रसिद्ध है, वे तो साक्षात बल ही है। तथा कूटमन उत्तराक्रम राम प्रहर तांबर, इसके बाद कूट तैयार लगे थे, चारुण मुष्टिक सौ कौशल और कूट, ये पांच पहलवान स्पेशल रखे गए थे कंस के द्वारा कृष्ण बलराम के बाद। तब कूट आया बलराम से लड़ने, वो सोचा कि अभी थका है अभी लड़े, मतलब मुष्टिक को मारने में थक गया है तो मैं चलू, हो गया तो आते ही उसको बाम मुष्टिया बाएं मुष्टिका से बलराम जी ने मारा, उसका सिर फट गया वहीं गिर, उसको लड़ने नहीं दिया बहुत देर तक, अब बहुत रफ्तार से जो चालू हो गया तो तेज गति हो गई। तरहे वही सलाह कृष्ण पदा शीर्ष कहा दीघा विवीर्ण कौशल का उभावती सल आया लड़ने के कृष्ण से, भगवान ने देखा कि बड़े भाई मुष्टिका से मारे तो ये अपने पैर से ऐसा जोर से मारे फुटबॉल जैसा कि उसका सिर फट गया और मर गया। कौशल भी ठीक वैसा ही आया, तो उसको एक पैर से मारा था भगवान ने दाहिने पैर से, और बाएं पैर से मार, दोनों एक साथ लड़ने के लिए आए कृष्ण के पास, दोनों एक साथ लड़ेंगे और इसको मार के लिए पकड़ देंगे, तो दोनों को दोनों पैर से ऐसा जोर से मारेंगे दोनों की सिर द्विधा हो गए दो खंड में और दोनों मर गए, पांच पहलवानों की लाश हो गई, और उधर जय जय कार सब होने हो रहा था। विशेष यदि कुछ लोग डर कर बोल रहे थे, लेकिन और लोग तो आनंद में बोल रहे थे, कार से बढ़ने के लिए आने वाली दशा हो गई। निदाय गौर हरी चारों में मुष्टि के कूटे समय तो सल के हते श्रेषा प्रदुर्मल्ला सर्वे प्राण पर स्वा, और भी सैकड़ों मल थे वहां बैठे बारी बारी से लड़ेंगे, लेकिन जब पांच सबसे बड़े बड़े पहलवान मर गए तो शेषा प्रदुर्मल शेष भाग गए धीरे धीरे गर्दन भी कम करके, ये सब अब मरे क्यों, हम समझ गए कोई भी इनसे पार नहीं पाएगा, तो सब भाग गए, कौन मरने जाए आप, रखे गए थे लड़ने के लिए पहलवानी दिखाने के लिए, लेकिन सब भाग गए, शेषा हम बचे हुए लोग प्रदुर्मल प्रकर्षण दुद्रु बहुत तेज गति से भाग गए, वो लोग समझ गए कि अब कंस मारा जाएगा, इसलिए भागने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में कंस पकड़ेगा और ये करेगा, सर्वे प्राण परिश्रम क्योंकि बेचारे प्राण बचाना चाहते थे, जीना चाहते, गोपान वयस्य ना गोपान व गोपान वयस्या नादृष्ट विचारक, फिर दोनों भाई कहे कि अब हम दंगल दिखाते हैं, अपने सखाओं को कहे चलो आओ खड़ा में सब, तो गोप सखाए आने लगे आ गए और उनके साथ कृष्ण बलराम लड़ने लगे, और उस लड़ाई में भगवान दिखा रहे हैं कि गोप उनको पटक रहे हैं लड़के पटक रहे हैं, और भगवान कभी पटकते हैं कभी वो पटकते हैं कभी ये वो ऐसा होने लगा है, और पांच पहलवानों की लाश को एक किनारे कर दिए गए, युद्ध हो रहा है, अब वास्तविक क्रीड़ा हो रही है, खूब खेले भगवान सखा रहे, खींच कर वो लड़के नहीं आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी खींच आ सकते आओ और आओ राजा को दिखाना है। अच्छा जब दोनों विहार करने लगे भगवान कृष्ण और बलराम, तो बाजा बजाने वाले जो लोग पहले से नियुक्त किए गए थे बेचारे ने भूल गए कि कंस की पराजय हो रही है नहीं बजाना चाहिए, वो सब बजाना चालू किए घाय 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 जोर जोर से कृष्ण भगवान के इस विजय पर और बच्चों के साथ बिहार के, तो सब बाजा बजाना चालू किए, बाद माने से सूर्यसु बलगंतव रूत नुपुर नुपुर चरण में था ही, नाचने लगे अखाड़ा में और बाजा बजने लगा, सब बजाने वाले खड़े हो गए गाने लगे, जना प्रज हिशु सर्वे कर्मणा राम कृष्ण, कृष्ण और बलराम के कर्म से सभी जनता प्रसन्न हुई, केवल रीते कंसन भी प्रमुखिया साधु साधु साधु, केवल एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ वो कंस, कंस को छोड़ करके सब लोग प्रसन्न हो गए, और ब्राह्मण जो बैठे थे वे कहने लगे साधु 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब भय नहीं रहा कंस का, अब सबको विश्वास हो गया कृष्ण मारेगा कंस को, जब ये चारूर मर गया तो अब कंस भी मरेगा, ये विश्वास हो गया, इसीलिए भय समाप्त हो गया, सब लोग जय जयकार करने लगे, हतेशु मल्लव अर्जेशु विद्रुतेशु च घोजरा, जब सारे पहलवान मार दिए गए और कुछ लोग भाग गए, मतलब पांच मार दिए गए और भाग गए, तो इसके बाद अकस्मात कंस बाजा बजाने वालों को सबसे पहले डांटा, बंद करो किस कारण से बजा रहे हो मूर्ख कहीं के, इसी के लिए रखा गया था तुम लोगों को, तुम लोग कृष्णदास हो कि कंस दास हो, वो रोक रहा था लेकिन बजाने वाले तो मस्त बजा रहे, खूब बड़बड़ा रहा बक रहा नेवारे सुतूर जानी वाक्यम छेदम हुआ था, वो मना किया बाजार में और बोलने लगा, थोड़ा लोग डर गए, बाजार जब बंद हो गया तो कहता है
निसारे व दुर्वृतम, इन दोनों खलों को, दुराचारियों को यहां से बाहर करो।
मंच पर बैठे बैठे बोल रहा है,
इन दोनों को यहां से बाहर करो। निसारे तो निकाल दो, निसरण कर दो। दुर्वृत्त, इनका वृत्त, इनका आचरण बहुत दूषित। वसुदेव आत्मजो पूरा, इस मल्ल सभा से ही नहीं, मथुरा से इनको बाहर करो। कोई है कोई वहां क्यों सुनने जाए, सब डर कर भागे कि उसकी आज्ञा पालन कर। इनको यहां से बाहर करो। बक रहा है, धनम हर गोपाना, गोपों का धन हर लो। यह नंद अनेको पाए है, नंदम बलित दुर्मति, ये दूषित मति दुष्ट नंद को अरेस्ट कर।
कौन आज्ञा पालन करने वाला था, लेकिन बक रहा है।
वसुदेव वस्तु दुर्मिध्या अन्यता मासु सपन, वसुदेव सबसे खल है, दुष्ट शिरोमणि है, दूषित बुद्धि है उसकी, उसका वध कर दो। और उग्र सेन जो मेरा पिता जेल में बंद है, उसकी भी जान मारे, उन लोगों के पक्ष में रहता है। इस तरह से बक रहा है। एवं विकट माने भाई कंसे प्रकुपित हो गए। इस प्रकार से जब बक रहा था, जब उस देव जी को बुरा कहा, नंद महाराज को, उग्रसेन जी को, तब भगवान अपकुपित हो गए, प्रकुपित हो गए। देखे सब लोग भगवान की आंखें और लाल लाल, और वहां से भी उछले जोर से, वो बहुत ऊंचा मंच पर था, भगवान ऐसे जोर से उछले। और जब जा रहे थे ऐसे उछल करके, तो तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो गया भगवान से लड़ने के लिए। भगवान उसके तलवार का वार बचा करके और ऐसे मुकुट को पहले फेंके, हाथ से हटा, हाथ हटा करके केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके और वहां से अखाड़ा में पटके जोर से ऊंचे मंच से, और पटकने के बाद स्वयं ही उसके छाती पर कूदे बहुत जोर से, कूदने मात्र से कंस मर गया। और मर गया तो उसके मरे हुए शरीर को भगवान उस अखाड़ा में खूब खींच रहे थे। मर गया तो उस समय क्रोध में खींच रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी करते खींचने के कई कई भाव हैं। उस समय जब खींच रहे थे, वो मर गया तो हा हा शब्द भी बहुत निकला, और कंस की स्त्री आए और लोग भी थे, सब हाहाकार करने लगे, लेकिन बाकी लोग तो जय जय कर करते थे, तो हा हा कुछ लोग कर रहे थे, हाय 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 राजा मारा गया राजा। और कुछ लोग तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो जैसे सिंह हाथी को मारकर खींचता है, उस तरह से भगवान उसको अखाड़ा में खींच रहे थे। उसके आठ भाई थे कंस के, अपने बड़े भाई को मरा हुआ देखकर सब हथियार लेकर के आए लड़ने के लिए। लेकिन लड़ने के लिए आए तो श्री बलराम जी ने हाथी दांत से ही सब पर एक एक बार मारा, आठ बार में सब पर, ज्यादा नहीं मारा। इस तरह से अथापि रघुकांतस्तु संयतां रोहिणी सुतः अहं परिघमुद्यम्य पशुनिव मृगाधिपः। यहां लिखा गया कि परिघ से मारे, परिघ कर कोई हाथी दांत है, हाथी दांत से इतना जोर जोर से मारे कुछ मर जाए। मेदुर दुम दुभय उद्यम निगम, आकाश में देवता लोग बाजा बजाने लगे। कौन जब तक जीवित था तब तक नहीं बजा रहे थे, डर लगता था उस तक। अब फ्री देवता लोग बाजा बजाने लगे, अब पृथ्वी पर भी बजने लगा। और कंस की स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी, अपने पति के मरण के दुख से दुखित होकर के छाती पीटती हुई स्त्रियां आई। कई स्त्रियां थी कंस की, रोती हुई आती। और भी जो वीर मरे थे पहलवान, उनकी स्त्रियां और जो लोग मरे थे सबकी स्त्रियां आई, और अपने अपने पतियों के शव को पकड़ करके और विलेपुर सुस्वर उच्च स्वर से रोने लगे। बार बार आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, कहते थे, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ
करुणानाथ वत्सल, हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ। अरे वो बहुत धर्मज्ञ थे, यह धर्मज्ञ पद वास्तव में ऐसा ही कहना चाहिए। चाहे पति या पिता कितना भी पापी रहा हो, लेकिन कहना चाहिए धर्मज्ञ। जैसे हम लोगों के भारतवर्ष में कोई व्यक्ति मर जाता है, भले पापी हो, नरक में गया हो, लेकिन बेटा लिखता है कि हमारे पिता जी का स्वर्गवास हो गया। नहीं लिखता है, कभी नहीं लिखा कि हमारे पिता जी का नरकवास हो गया है, आप लोग आइए हमारे स्वर्गवास, वैकुंठवास, गंगा लाभ, गंगावास, यही लिखता है। स्त्रियां कह रही हैं, हे धर्मज्ञ, हे धर्म के जानने वाले, करुणा नाथ, आप बहुत करुणा करने वाले थे, वत्सल थे, आप बहुत वत्सल थे। देवकी के पुत्रों को जेल में मार डाले, वो बहुत वत्सल थे। तो या हते न निहता वयम के सभी अपजाय, आपके मारे जाने से हम सब मर गए। त्वया विरहिता पत्या कुरियम पुरुष न सौ होते भयो निवृत्त मंगल, अब मथुरा आपके बिना शोभित नहीं होगी, अब यहाँ कोई उत्सव नहीं होगा। जैसे हम विधवा हो गए, वैसे मथुरा भी विधवा हो गई। अनाद शांत होता न कृतवान प्रभु, लेकिन सत्य बोल रही है स्त्री बाद में कहती है, आप निरपराध प्राणियों को सताए। मैं तो देवकी वसुदेव को इतना निकाला जी रखना, उनके पुत्रों को मारना, इस पर कर आप बेअपराध प्राणियों को सताए थे, द्रोह किए थे, इसीलिए आपकी ये दशा हो गई। तेने माम बहुत दशा नहीं तो भूत ध्रुव को लगे। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकता है। आप राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन आपने निरपराध है लोगों को बहुत दुख दिया था, इसीलिए आपकी ये दशा है। यह वास्तव में बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। दूसरों को सुख देने पर सुख मिलता है, दुख देने पर दुख मिलता है। हम लोगों को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, पहले जो हम दिए हैं वही मिला है, आज जो देंगे तो बाद में मिलता है। इस सिद्धांत है। कंस इस दुर्दशा को देखकर उसकी स्त्रियां कहती हैं कि अब निरपराध प्राणियों को सताए तो दुख दिए, तो इसीलिए आपकी जो दशा हुई। भूत ध्रुव को लभे, प्राणियों को सताने वाला कैसे सुखी हो सकता है। जो लोग गाय खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, इन लोग तो बहुत दुख भोगेंगे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, चाहे किसी भी प्राणी को सता रहे हैं, दुख तो भोगना ही है। सर्वे सामने भूता नाम प्रभु आपके, यह काल समस्त प्राणी को उत्पन्न करता है, विनष्ट करता है, श्री कृष्ण ही काल है। गुप्ता चवध्यायी मन प्रश्चित सुख में, कृष्ण के नियमों की अवहेलना करने वाला, भगवान के दल द्वारा बनाए हुए नियम की अवहेलना करने वाला कभी सुख से नहीं बदलता है। इस प्रकार कंस की स्त्रियां रौ विदोर हो रही थी, तो चूंकि अब कंस के परिवार में कोई बचा नहीं था, सब मार दिए गए थे, इसीलिए भगवान ने उन सबके द्वारा मरे हुए अपने मामा लोगों की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। तो सब परिवार के लोग थे, मामा थे, लेकिन भगवान भी नौ और आठ, नहीं आठ और एक, नौ, नौ मामा लोगों को मारे, और मामा इनके सब भाइयों को मारे थे। तो इस तरह से देखिए, तो भगवान ही सारी काम क्रिया करा रहे, अंत्येष्टि क्रिया, शरीर लिवा ले गए, भगवान गए साथ में जमुना जी के तट पर, कौन सी कथा संस्कार आदि हुआ, उसमें भगवान थे। शत्रु विधायक तो क्या, लेकिन जो उचित कार्य है वो कराना चाहिए। तो भगवान इसके बाद सब क्रियाएं कराए। जो लौकिक क्रिया होती है वो कराए। इसके बाद भगवान गए कारागृह में, जहां देवकी वसुदेव अभी आरेश, भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों प्रणाम किए वसुदेव जी और देवकी जी को। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके चरण में माथा रखकर साष्टांग प्रणाम किए भगवान और श्री बलराम जी, लेकिन वे लोग कृष्ण को हृदय से नहीं लगाए। देवकी वसुदेवस्त विद्या या जगदीश्वर कृष्ण वंदनव पुत्र सस्म जाते न सभी। उनके मन में यही भाव हो रहा था कृष्ण बलराम ईश्वर है, नारायण है, शंकर जी हैं, इसलिए वो लोग आलिंगन नहीं किए। 11 वर्ष के बाद उस पुत्र से भेंट है जिस पुत्र को आधी रात के समय वसुदेव जी पहुंचाए थे। कौन ऐसा पिता होगा जो देखते ही छाती से न लगा दे। लेकिन अभी अभी जो कुबले अपनी का वध किए, कंस का वध किए, इससे भगवत भाव ज्यादा उभर गया वसुदेव जी और देवकी जी के मन में। ये भगवान है, भगवान इसी से उनके हृदय से नहीं लगाए। शंका बन रही कि भगवान है तो भगवान को क्या हृदय से लगाना है, पुत्र भाव नहीं रहा। लेकिन भगवान कुछ ऐसी बात बोले, बाद में देवकी वसुदेव जो दोनों रोने लगे, देवकी जी के अस्तनों से दूध चुने लगा और वसुदेव जी तुरंत गोद में उठा लिए। भगवान ऐसी बात बोले और अपनी पुत्र स्नेहमयी योग माया का संचार की होंगे, ऐश्वर्य का भाव हटा करके पुत्र स्नेह उत्पन्न करते हैं। यह कथा कल कही जाएगी, कल इस कथा का समापन दिवस है। संस्कृत में इसको समाप्ति कहते हैं, समाप्त सोम कार्य सम्य आप्त कार्य प्राप्त होना, समाप्त कार्य खत्म होना नहीं होता है, समाप्त कार्य होता है कंप्लीटली प्राप्त, तो आज पूरा प्राप्त है, ये अर्थ होता है सम आप्त समाप्त सम्यक आप्त या प्राप्त। तो कल सम्यक प्राप्ति होगी, आना चाहिए समय से।
हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।